الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا استعذ بالله. तो इस क्लास में हम अपने हजरत इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी की किताब मिसारी मद में से पढ़ते हैं, और आजकल इसका आखिरी उनवान, आखिरी मजमून मिसाली शागिर्द चल रहा है। तो मिसाली शागिर्द का मतलब क्या कि इल्म हासिल करने में सबसे बेहतर और मुस्तैद कैसे बना जाए, तो वो मिसाली शागिर्द के तहत हजरत ने बयान फरमाया है। तो इस वजह से इल्म की फजीलत भी बयान करी, इल्म की अहमियत भी बयान करी, और फिर उसके बाद बहुत सारे वाकयात बयान फरमा रहे हैं कि हमारे हमारे दीन में या हमारे असलाफ के अंदर इल्म के लिए कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी गईं। तो इसी सिलसिले को हम आज उम्मीद है कि मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 212 पे अब हैं इस किताब की। तो इसमें एक और वाक्य बयान फरमाते हैं कि भिखारी बनकर भी इल्म हासिल किया। अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीर आलामुन नुबदा में एक वाक्य नकल किया है कि अंदलुस में बकी इब्न मुखल्लद, बकी इब्न मुखल्लद नामी एक नौजवान था। तो उसने सुना कि बगदाद में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा इल्मी मुकाम अता किया है। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी जाके उनसे इल्म हासिल करूँ। चुनाचे वो तैयारी करके अपने घर से निकल पड़ा। ये वो ज़माना था कि जब आलम इस्लाम जो था ना, ये एक सब ये दुनिया की सुपर पावर थी, और ये सबसे स्टेबल हुकूमत का ज़माना था आलम इस्लाम के अंदर। तो बैरूनी खतरात वगैरह जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर थे। इस्लामी आर्मी जो थी, फोर्स जो थी, वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग थी। तो अब जब जो जो बॉर्डर्स थे वो सिक्योर हो गए, ठीक है, जो सरहदें थी वो महफूज हो गई। तो अब यानी अंदर जो है ना, वो यानी मुमलिकत के अंदर फिर तामीराती सरगर्मियाँ, तामीराती सरगर्मियां जो हैं वो अपने उरूज पर थी। तामीराती सरगर्मियों में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? इंसान की तामीर, फर्द की तामीर। फर्द जब अच्छा बनता है तो फिर वो मुआशरे को अच्छा बनाने के काबिल होता है, ठीक है। तो तामीर जो है वो बिल्डिंग्स से शुरू नहीं होती। सऊदी अरब में वैसे बिल्डिंग से शुरू होती है, लेकिन वैसे बिल्डिंग से शुरू नहीं होती, वैसे अफराद से शुरू होती है। और फिर उसके बाद वो अफराद जो है ना, वो दूसरी चीज़ें फिर बाद में बनाते हैं। तो अफराद की तामीर के लिए इल्म सबसे पहले, सबसे पहले इल्म, और उसके ऊपर फिर तरबियत, ठीक है, तालीम, और उसके ऊपर फिर तरबियत। तो बहुत यानी शोहरा था उलमाए कराम का, उलमा दीन का इल्म, और वो भी कौन सा इल्म? दीन का इल्म, हदीस मुबारक का इल्म, और हदीस और कुरान मजीद से हासिल किया जाने वाला फिका का इल्म, ठीक है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये मुहद्दिस भी थे और फकीह भी थे। तो इनके लिए इल्म हासिल करने के लिए दूर से चलें। तो फरमाते हैं कि इस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। 20 साल की उम्र लाउबाली सी उम्र होती है। आजकल के लड़के 20 साल की उम्र में नफसानी ख्वाहिशात और शहवात के पीछे ऐसे अंधे हो चुके होते हैं कि उनको कुछ और सूझता ही नहीं है। और ये बच्चा 20 साल की उम्र में अपने घर से तैयारी करके सफर पे निकल पड़ा, ठीक है। तो आजकल टीवी और जो है वो फिल्में और गाने और मोबाइल फोन और उसके ऊपर वीडियोस, तो 20 साल की उम्र में जो है ना, वो उरूज के ऊपर जो है वो इस किस्म की शहवात वाला मामला चल रहा होता है। और बदकिस्मती से जहां पर ये नहीं भी है कि भाई वहां पर जो है ना वो शराब कबाब और मौसीकी वगैरह नहीं भी है, तो वहां भी वक्त जाया कर, वहां भी इस उम्र के अंदर वक्त जाया करना जो है ना, ये अपने उरूज के ऊपर होता है। उल्टे सीधे कामों के अंदर और सिर्फ खेल कूद के अंदर और बिल्कुल ही ना डिसओरिएंटेड पर्सन की लाइफ जो होती है वो गुजर रही होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कुछ पता नहीं होता। तो 20 साल की उम्र में तो अक्सर हजरात जो होते हैं वो इन चक्करों के अंदर रहते हैं और समझते हैं कि जी 40 साल में जाकर कुछ कर लेंगे, लेकिन पता उनको कुछ नहीं होता कि 40 साल तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, है ना भाई। कोई ऊपर से सर्टिफिकेट लेकर के आए कि जी उन्होंने 40 साल की उम्र पानी है या 60 साल की उम्र पानी है, हो सकता है 21 साल की उम्र पानी हो और बस खत्म बात। 20 साल के अभी हैं, 21वें साल में परवास, इस दुनिया से फरावत हो जाएगी फिर उसके बाद, ठीक है। तो किसको पता है कि कितनी उम्र लेकर के आए। तो भाई वक्त जाया करने के लिए तो कोई भी उम्र इंसान के पास नहीं है। तो जब हम वाकई मुसलमान थे तो उस वक्त 20 साल की उम्र में भी अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलते थे। तो वो कहते हैं कि समंदरी सफर था, लिहाजा मैंने एक बड़ी कश्ती में सफर शुरू किया, मगर अल्लाह की शान के समंदरी तूफान आ गया और इस तूफान की वजह से हमारी कश्ती घिर गई, तूफान में घिर गई और फिर लंगर अंदाज हो गई, हत्ता कि हमें 1 महीने तक लंगर अंदाज रहना पड़ा। इस 1 महीने में खाने पीने का सामान खत्म हो गया और मैं बीमार भी हो गया। समंदरी सफर में इंसान को उबकाई यानी उल्टी वगैरह भी आती है, मेरे कपड़े भी खराब हो गए, मेरी हालत बहुत गैर हो गई और मेरा वजन बहुत ज्यादा कम हो गया। इतनी ज्यादा मैंने मशक्कत उठाई थी कि देखने वाले को लगता था कि ये बच्चा तो मरने वाला हो गया है। बिलाखिर अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, कश्ती किनारे लग गई और मैंने अपना सामान किनारे पर उतारा। अब मुझे कई 100 किलोमीटर पैदल सफर करना था, चुनांचे मैंने सारी किताबों का वजन अपने सर पे रखा और पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ा चलता था, हाँफता कांपता था, पसीना आ जाता था तो मैं रुक जाता था। मैंने सैकड़ों मीलों का सफर अपनी किताबों का वजन पीठ पर उठा के इस तरह तय किया। इस सफर में मुझे कई दिन लग गए, हत्ता कि मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां से मुझे बगदाद का शहर नजर आने लग गया। मैं थका हुआ था, एक दरख्त की छांव में मैंने अपना सामान रख दिया और वहीं लेट गया। जब मैं सो के उठा तो तबीयत मेरी फ्रेश थी, यानी ताजा दम थे। मैंने फिर अपनी किताबें उठाई और सोचा कि अब मैं बगदाद शहर में जाता हूँ। रास्ते में मुझे एक बंदा मिला जो बगदाद शहर से वापस आ रहा था, उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर उससे पूछा कि बताओ इमाम अहमद इब्ने हम्बल का क्या हाल है। उसने कहा कि आप इमाम अहमद इब्ने हम्बल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए कि मैं इतना लंबा सफर करके और इतनी मुशक्कतें उठा के उनसे इल्म हासिल करने के लिए आ रहा हूँ। उसने कहा कि ऐ नौजवान, अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे, तूने अपने आप को इतनी तकलीफ में डाला लेकिन तू इमाम अहमद इतने हम्बल से इल्म हासिल नहीं कर सकेगा। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा कि इसलिए कि हाकिम वक्त उनसे नाराज हो गया है और उसने उन्हें घर में नजर बंद कर दिया है, लिहाजा इमाम साहब ना घर से निकल सकते हैं, ना किसी बंदे से मिल सकते हैं और ना ही कोई बंदा उनसे मिल सकता है। वो कहते हैं कि ये सुनकर मेरे दिल पे चोट पड़ी कि मैं तो इतना लंबा सफर करके आया हूँ, अब अगर मैं इमाम अहमद इब्ने हम्बल से इल्म हासिल नहीं कर सकूंगा तो फिर क्या करूंगा। मगर अल्लाह तवक्कुल करके मैं बगदाद शहर पहुंचा, वहां पर एक सिराए यानी होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया जिसका बहुत थोड़ा किराया था और अपना सामान उसके अंदर रख दिया। अब मैं इंतजार में था कि किसी तरह रात बसर हो जाए और अगले दिन मैं इमाम साहब से इल्म हासिल करने की कोई तरकीब निकाल। कहते हैं कि मैं रात को सो गया, अगले दिन मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने होटल के मैनेजमेंट से पूछा कि इस शहर में कहीं कोई इल्म का या हदीस का दर्स होता है। मेरा ख्याल था कि कोई मुहद्दिस तो होगा जो हदीस का इल्म पढ़ाने वाला होगा, मैं उनसे जाके पढ़ लूंगा। तो लोगों ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदर असर के बाद हदीस का दर्स होता है, तो
अच्छा
बड़े मुहद्दिस थे जो वहाँ हदीस का दर्स दिया करते थे। वो कहते हैं कि असर के बाद मैं उस मस्जिद में चला गया, लाखों का मजमा था, हदीस सुनने के लिए लाखों लोग आते थे और हजारों दवातें होती थी, हजारों दवातें यानी इंक पॉट्स होती थी कि जिनसे जो है ना वो कई कई तुलबा अपने पेन को इंक में डुबो करके अपने पास हदीस को लिख रहे होते थे और मुकब्बिर होते थे। जिस तरह हरम के अंदर जो है वो मुकब्बिर होते हैं ना अल्लाह अकबर की आवाज को पीछे पहुंचाने के लिए, उसी तरह से हजारों तो मुकब्बिर होते थे क्योंकि लाखों का मजमा होता था ना, तो अब लाउड स्पीकर होते नहीं थे, तो इतने जो है ना वो लोग इल्म हासिल करने के लिए एक मुहद्दिस के पास आया करते थे। तो वो कहते हैं कि असर के बाद मैं उस मस्जिद में चला गया, लाखों का मजमा था, मुहद्दिस की जगह के करीब जाके मैं बैठ गया। मैंने उनसे हदीस पढ़ी, उन्होंने हदीस पढ़ाई, थोड़ी देर हदीस के ऊपर बात की और उनके बाद उसके बाद उन्होंने रावियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रावियों के बारे में बताना शुरू किया तो लोगों ने सवालात पूछना शुरू कर दिए। ये मुहद्दिस यहया इब्न मुईन रहमतुल्लाह अलैह थे, जरह और तादील के फन में बड़े माहिर थे। रावियों के हालात पे उनकी बड़ी गहरी नजर होती थी, लोग उनसे रावियों के बारे में तस्दीक किया करते थे। ठीक है, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करने वाले तो उनको रावी कहते हैं कि फलाने सहाबी ने सुना, फिर उनसे फलाने ताबई ने सुना, फिर उनसे किसी ने सुना, फिर उनसे किसी ने सुना, तो ये सब रावी कहलाते हैं। तो जब कुछ लोगों ने सवाल किए तो मैं भी खड़ा हो गया और मैंने उनसे पूछा कि आप हिशाम बिन अम्मार के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो चादर वाले, मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे उनकी चादर के नीचे अगर तकबर भी आ जाए तो उनकी सकाहत में कोई फर्क नहीं आएगा, वो सका आदमी है। सका आदमी का मतलब बिल्कुल सही और सच्ची रिवायत करने वाला है, पक्की रिवायत करने वाला है, तो वो सका है। तो जिस हदीस की वो रिवायत करें वो हदीस ठीक होगी, यानी सका है बिल्कुल वो। इसके बाद मैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में उससे सवाल करना चाहता था, मगर जब मैं दूसरा सवाल करने लगा तो करीब के एक बंदे ने मेरे कपड़ों को पकड़ के खींचा और कहा, ए नौजवान, तू मुसाफिर नजर आता है, यहाँ का बंदा नहीं लगता। यहाँ मजलिस के आदाब ये हैं कि हर बंदा रोजाना एक सवाल पूछ सकता है, अगर एक ही बंदा सारे सवाल पूछेगा तो बाकियों को कैसे मौका मिलेगा। वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे हैरत हुई कि असल सवाल तो वो था जो मैं अब पूछना चाहता था, पहला सवाल तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, लिहाजा मैंने रोनी वाली आवाज बनाकर कहा कि मैं तो मुसाफिर हूँ और मुझे इस उसूल का पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं दूसरा सवाल पहले कर लेता, आप बराए मेहरबानी मुझे मौका दे दें कि मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ। मेरी रोती हुई आवाज सुनकर उन्हें मेरे ऊपर तरस आ गया और मजमे ने कहा, अच्छा आप एक सवाल और पूछ लें। जब मुझे इजाजत मिल गई तो मैंने यहया इब्न मुईन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में क्या कहते हैं। जैसे ही मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल का नाम लिया तो मजमे के ऊपर सन्नाटा तारी हो गया, क्योंकि शहर के लोग हालात जानते थे कि ये बंदा हाकिम वक्त की नजर में पसंदीदा नहीं है, उनको नजरबंद किया गया है, और जो उसका नाम लेगा वो भी हाकिम वक्त के आदाब में आएगा। मुझे तो हालात का पता नहीं था, लिहाजा मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल का नाम ले लिया। कहते हैं कि जब मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल का नाम ले लिया तो यहया इब्न मुईन थोड़ी देर के लिए सर झुका के बैठ गए, खामोश थे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद सर उठाया और एक ठंडी सांस लेने के बाद कहने लगे, आपने इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में पूछा है, इमाम अहमद इब्न हम्बल तो शेखुल इस्लाम है, वो तो बड़े मर्तबे वाले हैं, वो जिस हदीस की रिवायत करें वो हदीस बड़ी मजबूत होती है। उन्होंने इमाम अहमद इब्न हम्बल की बड़ी तारीफ की। मैंने जब इमाम अहमद इब्न हम्बल की इतनी तारीफ सुनी तो मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं उनसे जरूर हदीस का इल्म हासिल करूंगा, लेकिन कैसे हासिल करूं उसकी कोई सूरत नजर नहीं आती थी। जब दर्स खत्म हो गया तो सब लोग अपने घरों को जाने लगे तो मैंने करीब के एक नौजवान से कहा कि मेहरबानी करके आप मुझे इमाम अहमद इब्न हम्बल का घर दिखा दो। उसने कहा कि अगर मैं आपको उनका घर दिखा दूं और पुलिस को पता चल गया तो तुझे भी सजा मिलेगी और मुझे भी सजा मिलेगी, मैं अपने आप को मुसीबत में क्यों डालूं। वो कहते हैं कि मैंने एक और नौजवान से कहा कि ऐसा करो कि मुझे अपने साथ ले चलो, और अब जब इमाम अहमद इब्न हम्बल के दरवाजे के सामने से गुजरने लगो तो मुझे आंख के इशारे से बता देना कि उनके घर का दरवाजा है, फिर आगे मेरा काम, मैं जानू कि मैंने कैसे इल्म हासिल करना है। वो इस पर राजी हो गया, मुझे लेके चल पड़ा। मैंने रास्ते को अच्छी तरह याद कर लिया। इमाम साहब के घर के दरवाजे से गुजरते हुए उसने मुझे कहा कि ये बाईं तरफ वाला इमाम अहमद इब्ने हम्बल के घर का दरवाजा, तो मैंने वो दरवाजा देख लिया और उस गली को अच्छी तरह याद कर लिया। वो बंदा आगे चला गया और मैं भी उसके साथ आगे चला गया। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सोचता रहा कि मैंने इमाम अहमद इब्ने हम्बल का घर तो देख लिया है, लेकिन अब मैं उनसे इल्म कैसे हासिल करूँ। सारी रात सोचता रहा, तरकीब बनाता रहा, मगर मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं आता था। अगले दिन मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैंने फटे हुए कपड़े पहने ताकि देखने से मैं लोगों को एक सवारी और गदागर नजर आऊं, यानी भिखारी नजर आऊं। मैंने अपने एक हाथ में एक बर्तन भी ले लिया जैसे किसी साहिल के हाथ में होता है, तब बाहर निकल के मैंने एक लकड़ी भी हाथ में पकड़ ली और अपने घुटने को भी कपड़े से बांध दिया जैसे कोई जख्म होता है, ताकि देखने से ये भी पता चले कि ये बंदा कोई गदागर है जो मांग रहा है। फिर मैंने ऊंची आवाज से कहना शुरू कर दिया, अल अजरु रहमक रहिमकल्लाह। इस जमाने में जो गदागर होते थे वो रोटी का सवाल नहीं करते थे बल्कि सिर्फ इतना कहते थे कि अल अजरु रहिमकल्लाह, या कि अल अजरुकुम अल्लाह, इस तरह की बात करते थे, तुम्हारा अजर अल्लाह के ऊपर है, तुम्हारा अजर अल्लाह ताला के जिम्मे है, इस तरह से गोया कि दुआ देते थे, सुनने वाले समझ लेते थे कि ये सवाल करने वाला है, इसको कुछ चाहिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तो इन्होंने इस तरह से कहना शुरू कर दिया। तो
तो लोग समझ लेते हैं कि मोहताज है, फकीर है, इसको किसी चीज की जरूरत है, लिहाजा वो उसे कुछ दे दिया करते थे। अब लोग मेरी तरफ देखते और बाद लोग हैरान हो जाते क्योंकि मैं चेहरे से नौजवान नजर आता था, लेकिन हालत मेरी ऐसी थी कि कपड़े भी फटे हुए थे, मेरे हाथ में कशकोल भी था, मैं साया नजर आता था। कोई बंदा देता कोई ना देता। मैं शहर के अंदर सारा दिन भीख मांगता रहा ताकि लोगों को ये तारुफ हो जाए कि ये कोई भीख मांगने वाला गदागर है। कहते हैं कि जब असर का वक्त हुआ तो भीख मांगते मांगते मैं अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह के दरवाजे में जा पहुंचा। वहां जाके मैंने जोर से सदा लगाई, अल अजरु रहमकुल्लाह रहमकुल्लाह। मेरी मेरी अब अफसोस था कि इमाम साहब ने घर में बैठे बैठे मेरी आवाज सुनी तो वो बाहर बगैर ना रह सके। चुनाचे उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके हाथ में कुछ सिक्के थे जो वो साहिल समझ के मुझे देना चाहते थे। उन्होंने हाथ बाहर किया और कहा, ऐ साहिल तुम ये पैसे ले लो। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि इमाम साहब इल्म हासिल करने वाला साहिल हूँ और आपसे इल्म हासिल करने के लिए। म्यूट कर दें बस। तो मैं तो आपसे इल्म हासिल करने के लिए आया। इमाम साहब ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, हाकिम वक्त मुझे भी सजा देगा और तुझे भी सजा देगा। तो मैंने कहा कि हजरत मैं सारा दिन शहर के अंदर इसी तरह भीख मांगता फिरूंगा और असर के वक्त जब लोग कम होते हैं, चलन फिरन कम होती है, तो मैं आपके घर के दरवाजे पे आके सदा लगाऊंगा। आप दरवाजा खोल दिया करना, हाथ में ये पैसे रखना। अगर कोई और बंदा करीब हो तो मेरे कशकोल में पैसे डाल देना, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। और अगर कोई बंदा करीब ना हो तो आप मुझे एक दो अहादीस पढ़ा दिया करना, मैं सुन के उनको याद कर लिया करूंगा और इस तरह मुझे आपसे इल्म हासिल करने की सआदत नसीब हो जाएगी। इसमें इमाम साहब राजी हो गए। वो कहते हैं कि मैं पूरा एक साल रोजाना लोगों को दिखाने के लिए पूरे शहर के अंदर भीख मांगता रहा, लोगों के सामने जिल्लत उठाता था और असर के वक्त इमाम अहमद ने हम्बल के दरवाजे के पास पहुंचकर अजरुकुम अल्लाह की सदा लगाता था। इमाम साहब दरवाजा खोलते और अक्सर बेशतर कोई बंदा करीब नहीं होता था, लिहाजा इमाम साहब दो तीन अहादीस मुझे सुना दिया करते थे और मैं एक ही दफा सुन के उनको याद कर लिया करता था। पूरा साल मैंने इस बहाने से इमाम अहमद अपने हम्बल से हदीस का सबक पढ़ा। एक साल के बाद हाकिम वक्त फौत हो गया। जो नया हाकिम बना वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ मोहब्बत करता था और उनसे अकीदत रखता था। बिलाखिर उसने नजरबंदी खत्म कर दी और इमाम साहब का जामा मस्जिद में दर्श शुरू हो गया। वो कहते हैं कि जब पहला दिन था लाखों लोग दर्स सुनने के लिए आए थे, मैं भी मस्जिद में गया तो मुझे तो बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। बहरहाल मैं आगे होता होता ऐसी जगह पहुंचा जो इमाम साहब से दूर थी। जब इमाम साहब की नजर मुझ पर पड़ी तो इमाम साहब ने कहा, लोगों रास्ता दे दो, इल्म का असल साहिल तो ये है, इल्म का असल साहिल तो ये है, ये असल तालिबे इल्म है। पूरा एक साल भिखारी बनकर ये मुझसे इल्म हासिल करता रहा, अब इसको मुझसे दूर ना रहने दो, करीब आने दो ताकि यह हदीस का इल्म मुझसे हासिल करे। चुनाचे मैं इमाम साहब के करीब जाकर बैठा और मैंने इमाम साहब से मजीद अहादीस का इल्म एक शागिर्द बनकर हासिल किया। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में ऐसे तालिब इल्म भी गुजरे हैं जो साइल बनकर पूरे शहर के अंदर जिल्लत उठाते थे और अपने उस्ताद से इल्म हासिल किया करते। इल्म की कदर जो है ना, वो सही मानों में इस उम्मत ने की है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत। कभी तारीख में किसी दूसरी उम्मत ने इल्म की इतनी कदर नहीं करी। इल्म दीन पढ़ने वाले खुश नसीब तलबा का मकाम तो कयामत का दिन होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि ऐ उलमा की जमात, तुमने इल्म कैसे हासिल किया था। वहां पर असहाब सुफा भी खड़े होंगे, वो कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें तो खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहेंगे, या अल्लाह मुझे भूख की वजह से गश आ जाता था, मैं गिर जाया करता था और लोग समझते थे कि मैं मिर्गी का मरीज हूँ। उस दिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हजरात जिन्होंने इल्म हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी वो भी खड़े होंगे। ऐसे वक्त में बकी इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह मैं भिखारी बन के सारे शहर के सामने जिल्लत उठाता था और शाम के वक्त दो तीन अहदीस इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा करता था, मैंने इस तरह से इल्म हासिल किया। अजीज तुलबा, आप इस वक्त अल्लाह के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, या अल्लाह हम भी अपने तौर पे कोशिश करते थे, जो वक्त हमें खाली मिलता था उस्तादों से रुजू किया करते थे और उनसे पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला आपके इस पढ़ने को कबूल फरमाए, यकीनन आप खुश नसीब। जरा इस बात को गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने हर बंदे के सामने आज कुछ ना कुछ रख दिया है। किसी के सामने अल्लाह ने पत्थर और ईंट को रख दिया है, वो ईंट को ईंट से जोड़ता रहता है, हम उसे बिल्डर यानी बिल्डिंग बनाने वाला कह देते हैं, इसी पर उसका गुजारा है। उसका सारा दिन इसी में गुजर जाता है। किसी के सामने अल्लाह ने कपड़े को रख दिया, वो कपड़े को काटता है, फिर कपड़े को जोड़ता है, हम उसे दर्जी कहते हैं, ये दर्जी है और इसी में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रख दिया, वो लकड़ी को कूटता है, काटता है, जोड़ता है, फर्नीचर बनाता है, उसको हम कारपेंटर यानी बढ़ई कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया, ये बंदा लोहे के पुर्जों को खोलता है और उनको जोड़ता है, हम उसको मैकेनिक कहते हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी में गुजरती है। कितनी अजीब बात है कि किसी के सामने अल्लाह ने ईंट रख दी, किसी के सामने कपड़ा रख दिया, किसी के सामने लोहा रख दिया, किसी के सामने लकड़ी को रख दिया। अजीज तुलबा, आप वो खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ने आपकी झोली में कुरान रख दिया, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान रख दिया है। आप कितने खुश नसीब हैं, कयामत के दिन आप अल्लाह से कह सकेंगे कि अल्लाह, हम सारा दिन कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, और इस इल्म को हासिल करने में हमने पूरी जिंदगी गुजार दी। कयामत के दिन आप अल्लाह को जवाब देते हुए कहेंगे कि या अल्लाह, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। ऐ अल्लाह, तेरे कुरान को सीनों से लगा के हम घरों से निकलकर मदारिस में जाते थे और वहां इल्म हासिल किया करते थे। ऐ अल्लाह, हमने तो पूरी जिंदगी इस इल्म के हासिल करने में गुजार दी। चुनांचे अल्लाह ताला कयामत के दिन आप पर अपनी रहमत की नजर डालें। हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह तुलबा के सामने ये हदीस पढ़ा करते थे कि अल्लाह ताला कयामत के दिन जब अपने बंदों का फैसला करने के लिए अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज होंगे तो उलमा से फरमाएंगे, इन्नी लम अजल इल्मी व हिल्मी फीकुम इल्ला व अना उरीदु अन अग़फिरा लकुम अला मा काना फीकुम वला उबाली, कि मैंने तुम्हारे दिलों में अपना इल्म और हिल्म इसलिए बदियत किया है ताकि तुम्हारी मग़फ़िरत करूं और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, यानी मुझे तुम्हारे गुनाहों की कोई परवाह नहीं है, तुमसे गलतियां भी हो गई, कोताहियां भी हो गई, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने तो तुम्हारे दिलों में अपने दीन का इल्म बदियत किया है, तो मैं अब तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करता हूँ। ऐ उलमा की जमात, मैंने तुम्हारे सीनों के अंदर इल्म इसलिए नहीं भरा था कि आज मैं सारी मखलूक के सामने तुम्हें रुसवा करूं, जाओ तुम्हारा हिसाब देते हुए मुझे शर्म आ, बिला हिसाब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, इंशा अल्लाह वो ऐसा दिन होगा जब तुलबा व उलमा बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की रहमत की नजर होगी और अल्लाह ताला उस दिन हमें रुसवा होने से महफूज फरमाएंगे, और हम भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। अल्लाह ताला हमारी सूरतों को कबूल फरमा कर इसी पर हमें कयामत के दिन सुरफुरू फरमा दे और हमें एक मिसाली शागिर्द बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब्हा आमीन व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह। तो ना सिर्फ ये कि हजरत ने इस बयान के अंदर हमें इल्म की कदर समझाई बल्कि इल्म वालों की कदर समझाई। अब हम आप तो ऐसे मदरसों में जाकर के दीन का मुस्तकिल इल्म हासिल करने वालों में से नहीं है, लेकिन कम से कम हमें भी कुछ ना कुछ शबाहत उन लोगों के साथ हासिल है जब हम भी अपने सामने कुरान खोल करके किसी दरस कुरान का इवन ऑनलाइन हिस्सा बनते हैं, किसी दरस हदीस का इवन ऑनलाइन हिस्सा बनते हैं, और किसी दीन का के फिका का इल्म हासिल करने का अगर हम ऑनलाइन भी हिस्सा बन जाते हैं तो ये भी नाखून कटा के शहीदों में शामिल होने के मुतरादिफ बन सकता है, अगर हम इस दीन इस इल्म की इज्जत करें, कदर करें और इस इल्म हासिल करने में हमारी नीयत अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा, इल्म की कदर करें, इल्म वालों की कदर करें, तो कोई इसके अंदर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, कोई वजह नहीं है शक करने की कि अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारा भी हिसाब उन लोगों के साथ कर दे। जब लिस्ट बनाई जाती है ना कि कितने लोग अकाउंट होल्डर्स हैं, ये भी हमारी हजरत ये मिसाल देते हैं, जब बैंक के अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट बनाई जाती है ना तो उसमें फिर सारे अकाउंट होल्डर्स का नाम आता है, चाहे किसी के अकाउंट के अंदर 1 मिलियन डॉलर्स थे, चाहे किसी के अकाउंट के अंदर सिर्फ जो है वो $5 थे, अकाउंट होल्डर तो वो भी है ना, तो लिस्ट के अंदर तो सबका नाम आता है, उस वक्त जो है वो तादाद और मिकदार नहीं देखी जाती कि इसके पास इतना इल्म था, इसके पास उतना ज्यादा था, इसके पास इतना कम था, और ये तो बस खाली ऐसी किताब खोल करके बैठ जाता था, नीयत तो इसकी थी ना इल्म वालों में शामिल होने की, और दिल के अंदर इसके मोहब्बत तो थी ना इल्म वालों के लिए। तो इस वजह से हमारे लिए लाजम है कि हम उन लोगों में से बने कम अज कम जो कि इल्म वालों से मोहब्बत करते हैं, और दीन के इल्म को हम अपने लिए खजाना समझें और उन लोगों को अपना मोहसिन समझें, उन लोगों का अपना मोहसिन समझें जो कि इस दीन के इल्म की हिफाजत कर रहे हैं, इस दीन के उलूम को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं। हम मोहताज हैं उन लोगों के, हमारा ईमान उन लोगों का मोहताज है, वो हमारे अकीदों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मामूर फरमाए हैं, वो हमारे आमाल की हिफाजत के लिए उन लोगों को अल्लाह ताला ने मामूर फरमाया है, वो अल्लाह ताला के खसूसी बंदे, वो अल्लाह ताला के खसूसी बंदे। कितनी बेहतरीन मिसाल से समझाया कि किसी के सामने लकड़ी रखी होती है, किसी के सामने लोहा रखा होता है, किसी के सामने कपड़ा रखा होता है, बेशक उसके पास दुनियावी माल दौलत की फरावानी हो जाती है लकड़ी के बहाने, लोहे के बहाने, किसी और जो है वो धात के बहाने, किसी और तरीके से दुनियावी माल दौलत की फरावानी हो जाती है, लेकिन क्या दुनियावी माल दौलत ये आखिरत की माल सूरत में मुकाबला कर सकती है? क्या लकड़ी, लोहा, कपड़ा, धातें, कंप्यूटर या इवन इंसानी जिस्म भी, खाली जिस्मानी डॉक्टर, बड़ी इज्जत करते हैं हम जिस्मानी डॉक्टर, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, कितना आगे पीछे घूमते हैं, उनके आगे पीछे फिरते हैं, कितनी उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने क्या चीज रखी होती है? इंसानी जिस्म, जिसके अंदर से अक्सर औकात जो होती है वो नजासत ही होती है, नापाकी ही होती है, उसके अंदर पीप, खून, पखाना, पेशाब, ये सारा है ना इंसानी जिस्म, कितनी इज्जत करते हैं। और जिनके सामने अल्लाह ने अपना कुरान रखा है, जिसने जिनके सामने अल्लाह ताला ने अपने हदीस, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान रखा है, फिका रखी है, अरबी जुबान रखी है जो जन्नत की जुबान है, तो हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनको न जाने क्या समझते हैं और उनसे हम फायदा उठाने की भी कोशिश नहीं करते। हमें तो उनके साथ चिपक जाना चाहिए, नत्थी हो जाना चाहिए, हमें तो उनके साथ लटक जाना चाहिए और अपनी औलादों को उनके साथ लटका देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। बेटा इनसे इल्म हासिल करो, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की भी कामयाबी की जमानत देंगे, ये तुम्हारी आखिरत की जिंदगी की कामयाबी की जमानत देंगे। कैसे कोई दुनिया का होता है, अच्छी जॉब के ऊपर होता है, अच्छी उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करी हुई होती है, तो पूरा खानदान जो है वो उसके पीछे चिपकता है जाकर के, और अपने बच्चों को उसके पीछे चिपकाता है, बेटा उनसे बात कर लो, उनसे जो है वो करियर काउंसलिंग करवा लो, उनसे जाकर के जो है ना वो तुम तरीके सीख लो, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कैसे उन्होंने तालीम हासिल करी, कैसे उन्होंने जो है वो अपने कैरियर बनाया, कैसे वो इस मुकाम के ऊपर पहुंचे। लेकिन आखिरत के जिसके पास इल्म है, आखिरत के जिसके पास असबाब मौजूद हैं, उनके लिए हमारी जिंदगी में क्या हैसियत होती है, हमारे खानदानों में उसकी क्या कदर होती है? तो ये जो तो वाकयात हमने पढ़े हैं, ये तो अच्छे दौर के वाकयात, इस वक्त हम इस दौर के अंदर हैं नहीं, इस वक्त हम इस दौर के अंदर नहीं है कि जिसके अंदर इन वालों की कदर हो रही है, लेकिन जमाने ने पलट करके वापस आना है, ये तो 100% गारंटी है कि जमाने ने पलट करके वापस आना है, इस्लाम ने गालिब आना है, इस्लाम ने गालिब आना है, लेकिन क्या हम उसके गलबे का हिस्सा होंगे, क्या हमारी औलादें, हमारी नस्लें उसके गलबे का हिस्सा होंगी, या हमें जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने इस्लाम की कदर नहीं करी, हमने कुरान की और हदीस की कदर नहीं करी। इस वजह से अल्लाह ताला हमें तब्दील करके किसी ऐसी कौम को लेकर के आ जाएंगे जो कि हमारी जैसे नहीं होगी। अल्लाह ताला ने माजी में भी ऐसा किया है और अल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी ऐसा करने के ऊपर कुदरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी दीन की समझ अता फरमाए, इस दीन की हिफाजत के लिए अपनी फिक्रों को लगा देने की तौफीक अता फरमाए। उठते बैठते ये आजकल ऐसे चलते फिरते ही वक्त जितना थोड़ा सा ही मिलता है तो कभी एक पैराग्राफ पढ़ लिया, कभी दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया। एक किताब हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दावत, ये जो तबलीगी जमात के जो जो फाउंडर थे हजरत मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके ऊपर हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, तो उसका मुताला जो थोड़ा बहुत इधर उधर से किया है, उफ सुबहान अल्लाह, उफ क्या फिक्र थी उनकी। यानी जब उनकी शदीद गलालत के दिन थे और मरज़ुल मौत के दिन थे, चंद दिनों में उनका इंतकाल हो जाने वाला था, उस हालत में भी उनका हाल ये था कि हर वक्त दावत की बात, हर वक्त दीन की बात, हर वक्त दीन की फिक्र। और लोग उनके पास जो आते थे ना उनकी तबीयत पूछने के लिए, तो उनको जो है ना वो डांट दिया करते थे कि ये भी कोई वजह है, तुम मेरी तबीयत पूछने के लिए इतना दूर से चल करके आए हो, मैं तो फानी हूं, मैं तो फिना होने वाला हूं, ये जो दीन फिना होने वाला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है इस वक्त, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, तुम उसकी तबीयत हासिल करने के लिए, तबीयत लेने के लिए नहीं आ रहे होते हो सफर करके, और तुम मेरी तबीयत पूछने के लिए आए हो। वो बात ही नहीं करते थे ऐसे लोगों से सिवाय डांट के। और कोई आलिम दीन आ रहा होता था तो उनके बारे में इतना अच्छा, उसको मेरे पास लेकर के आओ, जुबान मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती थी बीमारी की वजह से, तो अपने साथ किसी दूसरे आलिम दीन को हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ रखा हुआ था कि मैं तुम्हारे कान में बात कहूंगा, तुम आगे से जो आने वाले आलिम है हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरी बात को उनको सुना देना। तो मौलाना मंजूर नोमानी कहते हैं कि चंद अल्फाज उन्होंने इस तरीके से मेरे कान में कहे, मैंने आगे बयान करे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत दे दी, 1 घंटे तक बयान करते रहे हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने, 1 घंटे तक बयान करते रहे, इतनी इतनी ज्यादा कमजोरी के बावजूद। तो ऐसी फिक्र होती है, दिन रात फिक्र होती है, इन्नी दाऊत कौमी लैलन व नहारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या फरमाया था, मैंने अपनी कौम को दावत दी सुबह और यानी दिन और रात, दिन रात मैंने अपने दीन को अपनी कौम को दावत दी। क्या मतलब, ये कोई तबलीगी जमात की तादाद बढ़ाना उनका मकसद नहीं था, अल्लाह के दीन की हिफाजत और अल्लाह के दीन की इकामत, इलाए कलिमतुल हक, अल्लाह ताला के दीन के कलमे को बुलंद करना। तो ईमान वाले की जिंदगी हर चीज उसका ओढ़ना बिछोना, हत्ता कि उसका खाना पीना, हत्ता कि उसका खेलना कूदना, वो हर चीज एलाए कलमुल हक के, कलिमतुल हक के लिए, हर चीज एलाए कलिमतुल हक के लिए। चंद चूंकि मिनट रह गए हैं इस वजह से आज इस बात करें चला जा रहा है। पिछले दिनों हमारे कुछ बच्चों के जो है वो कराटे का प्रोग्राम हुआ, कराटे की क्लास हुई 3 महीने तक, उन्होंने माशाल्लाह ट्रेनिंग हासिल करी। तो उसके बाद जो है वो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बेल्ट्स का इंतजाम किया कि हाँ जी अब इन लोगों को रेड बेल्ट्स या पता नहीं ऑरेंज बेल्ट्स या रेड बेल्ट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो वो जो सर्टिफिकेट अवार्डिंग सेरेमनी हमने फिर उन बच्चों की करी थी, तो उसमें इस आज को एक बात याद आ गई, मैंने आप में से काफी और भी साथी मौजूद थे, बड़े भी थे और बच्चे भी थे, उनके सामने मैंने कहा कि हमारे हजरत जो है ना जब बहुत खुश होते हैं, हमारे पीर साहब मौलाना जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी जब बहुत खुश होते हैं ना किसी अपने मुरीद से, तो वो खूब उसके लिए जो है ना वो उसको तवज्जो डालना भी कहते हैं या समझने के दुआ करते हैं उसके लिए, और बड़ा एक खास उनका एक एक्शन होता है उस वक्त तवज्जो डालने का एक्शन। तो सारिज ने बताया सबको कि जब मैंने अपने हजरत को इस कराटे क्लास के बारे में बताया, इस कराटे क्लास के बारे में जिसमें कि 9-10 साल के बच्चों से लेकर के 15-16 साल तक के बच्चे थे खाली, हजरत इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि वही अमल जो कि बड़े बड़े इल्मी और दूसरे कामों के ऊपर खुश होकर के किसी के ऊपर तवज्जो डाला करते हैं, तो इस कराटे क्लास के सुन करके हजरत ने जो है वो वही अमल करना शुरू कर दिया खुश होकर के। तो फिर समझाया कि क्यों ऐसा किया हजरत, हालांकि कराटे क्लास के बारे में जो कि एक स्पोर्ट है उसके बारे में हजरत को बताया जा रहा था, इतना क्यों खुश हुए, क्योंकि ये कराटे क्लास बराए कराटे नहीं थी, ये बराए खेल कूद नहीं थी, ये बराए यानी खुशतबी खाली नहीं थी, बल्कि ये बराए दीन थी, ये बराए एलाए कलिमतुल हक थी, ये दीन का कलमा बुलंद करने के लिए कराए कराए। इसलिए नहीं कि ये लड़के जाकर के अब जो है वो नाउज बिल्ला, मतलब आजकल ये हालात नहीं है कि काफिरों को जाके कराटे मार मार करके जो है वो, नहीं, बल्कि ये जो बच्चों की तरबियत, बच्चों की जहन साजी, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लाना, बच्चों को दीन की निस्बत से जोड़ना और उनके माँ बाप को दीन की निस्बत से जोड़ना, ये असल मकसद था, ताकि ईमान की हिफाजत हो सके। इस वक्त तो हिफाजत करने का वक्त है, हिफाजत करने का वक्त है, ईमान की हिफाजत, और उसके लिए माहौल बनाना और उस माहौल को बनाने के लिए फिर इस किस्म की एक्टिविटीज करना, दिस इज ऑल फॉर दीन, दिस इज ऑल फॉर ईमान। सिर्फ ईमान और कुफर की किताब पढ़ना नहीं, ईमान की हिफाजत करने के लिए, जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते बुध के दिन हमने ईमान और कुफर की किताब भी पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन वो सिर्फ वाहिद तरीका नहीं है ईमान की हिफाजत करने का, बल्कि ईमान की हिफाजत के लिए आपको ईमान वाला माहौल बनाना पड़ता है, ईमान वाली फिक्र लानी पड़ती है, ईमान वाली सरगर्मियां करनी पड़ती है, ईमान की निस्बत से उठना और ईमान की निस्बत से बैठना होता है, तब जाकर के ईमान की हिफाजत होती है। तो ये सारी की सारी तकरीर जो है वो आपके सामने इसलिए इस फकीर बेतदबीर ने झाड़ी है कि सबके दिल के अंदर जो है ना वो इस ईमान की फिक्र और जज्बा पैदा हो। जिस तरह से इल्म के जज्बा, इल्म का जज्बा जो अभी हमने हजरत से वाकयात पढ़ करके हजरत की किताब में से इल्म के लिए जो जज्बा पैदा हुआ है ना, उसी तरीके से ये इल्म का मकसद क्या है, असल में मकसद ईमान की हिफाजत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे घर की औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे बोटों को, सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा लें। दुनिया और आखिरत की कामयाबी फकत इस दीन के अंदर, फकत इस दीन के अंदर। अगर इस दीन को हमने छोड़ दिया, हम कुछ कर लें हम नाकाम, हम कितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कितनी भी हम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे ले आए, कितने भी अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं, हम कामयाब हरगिज हरगिज नहीं हो सकते। हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इस दीन के अंदर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस दीन की मुकम्मल कामिल समझ अता फरमाए और अपने इस हुक्म उदखुलू फिस्सिल्म काफा के ऊपर अमल करने वालों को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।